योभूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे योभूतं च भव्यं च। जो भगवान भूतकाल वर्तमान काल भविष्यकाल तीनों कालों में एक समान रहता है। सर्वं यस्याधितिष्ठति सारा संसार जिसके अंदर ठहरा हुआ है और वो सारे संसार के अंदर व्याप्त होकर के निवास कर रहा है। स्वर्यस्य च केवलम वो भगवान सुख स्वरूप है और एक ही है, ऐसा सुख स्वरूप और कोई संसार का प्राणी नहीं है। तस्मै ज्येष्ठाय उस सबसे बड़े महान भगवान के लिए प्रणाम करो। गत वर्ष आज के दिन इसी वक्त अभ्यास यहाँ प्रारंभ हुआ था, अब ये चार महीने निरंतर साधना शिविर चलेगा और बहुत बढ़िया ये चलेगा, क्योंकि गर्मी भी नहीं है, ठंडा देश है, यहाँ का आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और यहाँ तुम्हारी भावनाएं भी सबकी बड़ी पवित्र हैं, तो इन भावनाओं का भी प्रभाव आकाश मंडल में दूसरों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जैसी जैसी विचारधाराएं जिस देश में जिस स्थान में जिस सोसाइटी में जिस मकान में जिस जाति में चला करती हैं वैसे ही विचारधारा का विकास हुआ करता है। तो आप लोग सब अध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर तत्व ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर आत्म ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर परमात्मा के ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर सब एकत्रित हुए हैं, तो ये चार मास बिल्कुल शांतमय जीवन बिता करके यम नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि यम नियम आधारशिला है इस तुम्हारे ध्यान समाधि की। अगर हमारा दिनचर्या अच्छी नहीं होगी, दिन का व्यवहार जीवन अच्छा नहीं होगा, तो ध्यान समाधि में भी ज्ञान नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी। तो ऐसा योगियों जैसा ऋषियों मुनियों जैसा शांत वातावरण बना करके और यहाँ साधना करो, अनेक प्रकार की सफलताएं लेकर के यहाँ से जाओगे। इस देश को भोग भूमि समझा करता था और ये ख्याल था कि ये देश योग के काबिल नहीं है, यहाँ विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है, और इस भावना को लेकर के इस देश को छोड़ करके गंगोत्री में वास किया था। तो गंगोत्री की साधना से या पहली साधनाओं से अब मन की स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे गंगोत्री बद्रीनाथ हिमालय ऐसा ही मुझे ये पहलगाम लगता है, इस देश का कोई प्रभाव मन पर जीवन पर नहीं पड़ता। तो तुमने भी ऐसा ही बनना है कि वह बाहर के देशों का या किसी का, सब देश समान ही प्र, ये तो पंजाबी में कहते कि दिल हरामी और हुज्जतों का ठेर, ये तो मेरे दिल के हरामीपन की बात थी उस वक्त। इसी देश में क्यों पिछले साल प्राण विज्ञान इतना अच्छा ग्रंथ लिख कर ले गया और चार पांच साल से यहाँ विज्ञान में सबकी उन्नति होती है, मुझे भी बुद्धि का बहुत विकास हो रहा है, कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ रह करके सोचती है। तो जब अपनी कमजोरियां हुआ करती हैं जीवन में तब वहाँ दोष देखा करता है, ये जगह अच्छी नहीं है, आदमी अच्छे नहीं है, देश अच्छा नहीं है, ये खराब है, यहाँ बदमाश लोग रहते हैं, शराबी रहते हैं, ऐसे रहते हैं ऐसे, तो कमजोरी अपनी होती है, दिल अपना खराब होता है और दूसरों पर थोपने लगा चलता है। तो जब तुम्हारा अंतःकरण अगर पवित्र शांत है तो कहीं चले जाओ कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। तो इसलिए अपना मन ऐसा बनाओ जैसा अब मेरा बन गया है, या तुम मुझे किसी जगह ले जाके बैठा दो और वहां प्रभाव नहीं पड़ता, सब जगह एक जैसा मालूम होता है। साधना के द्वारा जब तक अपने जीवन में कमजोरी होती है, अपने अंतःकरण में विकार होते हैं, तब तक देश काल निमित्त और सामग्री की अपेक्षा किया करता है, और जब अपने विकार दूर हो जाते हैं उसको देश काल निमित्त और सामग्री की अपेक्षा ही नहीं रहती, उसके लिए सब देश सब काल समान ही हो जाते। हाँ इतना होता है कि जैसे यहाँ शांत बैठे हैं, अगर कोई हथौड़े कूट रहा, पत्थर कूट रहा है, तो कान में शब्द का प्रभाव तो पड़ेगा। तो इतनी तो जरूरत अब भी पड़ती है कि बाहर के शब्द तंग ना करें, क्योंकि अब ध्यान में बैठे किसी पदार्थ का चिंतन कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी पदार्थ का निर्णय करते हम अंदर के आत्मा का, बुद्धि का, इंद्रियों का, कुंडलिनी शक्ति का, प्राण शक्ति का, जब वहां देखते और निर्णय करते हैं, तो वो अवस्था ऐसी होती है कि एक पदार्थ में, एक वस्तु में मन लगा हुआ होता, अगर आके कोई धक्का दे देगा तो हमारा मन तो वहां से हट जाएगा ना, क्योंकि हम जागृत में हैं। जागृत की अवस्था में समाधि है, और जागृत की अवस्था में एक पदार्थ का निर्णय कर रहे हैं, कोई वो निद्रा की अवस्था नहीं है, क्लोरोफार्म की अवस्था नहीं है। एक आती है क्लोरोफार्म की भी अवस्था, उसकी अब मैं उसका अभ्यास नहीं कराता, वह शून्य समाधि का। पहले तो मैं उसको बड़ा महत्व दिया करता था, पर जब मैं खुद ही उसको छोड़ दिया और उससे मेरी कुछ उन्नति तरक्की नहीं हुई, तब से मैं विज्ञानात्मक जो समाधि है इस पर ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि यही आत्मा का निर्णय करेगी, यही परमात्मा का निर्णय करेगी, यही पदार्थों का निर्णय करेगी, यही विज्ञान हमारे अंदर जो शक्ति है उनका निर्णय देगी। तो इसलिए ज्ञान पूर्वक जो समाधि है, चिंतन है, मनन है, निधिध्यासन है एक ही पदार्थ के विषय में, ये तुम्हारे लिए कल्याण का हेतु बनेगी, न कि शून्य और जड़ समाधि। तो शून्य समाधि जो है वो निद्रा के समान हो जाती है, जैसे निद्रा एक वृत्ति है, ऐसे शून्य समाधि भी एक वृत्ति होती है। उसमें शून्यता का अनुभव होता है और निद्रा में ज्ञान के अभाव का अनुभव होता है। तो ये दोनों मिलती जुलती हैं। जैसे एक आदमी 6 घंटे सोया तब भी नींद है, 6 दिन सोता रहे तब भी नींद है, 6 वर्ष सोता रहे तब भी नींद है। तो इस प्रकार की नींद का जो 6 घंटे में पूरी हो सकती है, 6 वर्ष या इतने वर्ष तक क्यों सोता रहे। तो इसलिए वह इस प्रकार की समाधि तो वह आत्मा के दर्शन का हेतु नहीं बनेगी, निद्रा भी आत्म दर्शन का हेतु नहीं बनती है। तो जागृत की अवस्था में जो तुम्हारा मन समाहित होकर के उस पदार्थ की खोज करता, देखता अंदर, तो वो तुम्हारे लिए जागृति योगी होगी। अब उसके खोज के लिए ये इतने 4 क्लासें बनी हैं। ये प्राण को लेकर के, प्राण शक्ति जो हमारे अंदर शरीर में काम कर रही है, जिसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा है मैंने, तो ये तो प्राण के द्वारा काम करेंगे। और ये ज्योति का, आत्म विज्ञान में भी ज्योति का बहुत वर्णन किया है। मुझे तो टाइम नहीं मिलता, एक दिव्य ज्योति नाम के विज्ञान का और भी लिखना चाहता था कि उसमें भी बहुत प्रकार की ज्योतियों का वर्णन आएगा। जैसे 70 प्रकार के प्राणों का इसमें वर्णन आता है, ऐसे कम से कम 70 से भी ज्यादा ज्योतियों का वर्णन इसमें आएगा अगर इस ग्रंथ को लिखा जाए। तो ये ज्योति के द्वारा आत्मदर्शन की ज्योति जो है रूप को दिखाएगी, आंखों की ज्योति है तुम्हारी शक्ल को दिखाती है, और प्राण जो है वो स्पर्श को दिखाएगा, प्राण ऐसे स्पर्श टच कर करके दिखाएगा, रूप को नहीं दिखाएगा, वो पदार्थ के शक्ल, पदार्थ के आकार प्रकार को दिखा देगा, रूप नहीं दिखाएगा प्राण, निश्चय करा देगा। क्योंकि ये जीवन का संचार सर्वप्रथम प्राण के द्वारा चलता है, जीवन का जो विकास होता है प्राण सारे शरीर में लेकर के जीवन को चलाता है। तो इतना ज्योति नहीं चलाती है जितना प्राण चलाता है, क्योंकि प्राण ज्योति का वाहक है। प्राण शक्ति जो है वो ज्योति, जैसे वायु जो है, वायु अग्नि से सूक्ष्म है, तो ये वायु ही बहाती है सूर्य की किरणों को, सूर्य की किरणों को लेकर के चलती है। तो और शब्द विज्ञान इससे भी सूक्ष्म है, शब्द विज्ञान प्राण से भी सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म शब्द जो है तुम एटम समझो, एटम असंख्य एटम इकट्ठे हो, ऐसे ही एटम के रूप में असंख्य शब्द इकट्ठे हो, तो वो फिर वायु का रूप बन जाते हैं। आपस में शब्द जो है चेतन के सन्निधान से शब्द जो है वो इकट्ठे होकर सम्मूर्छित से होकर के वो गति का हेतु बनते हैं। तो वो जो गति है वो वायु का रूप बन जाती है, प्राण का रूप बन जाती है। इसलिए शब्द विज्ञान तो इससे भी सूक्ष्म है, उसकी बात अभी हम नहीं कहते, उसके जरिए चला जाए तो ये शब्द विज्ञान, ये जो मंत्र जाप करने वाले हैं ये भी उस शब्द विज्ञान को देख सकते हैं, और ये जो नादानुसंधान करने वाले हैं ये दोनों क्लास मिलती जुलती है। मंत्र के द्वारा जो है, मंत्र भी समाधि की, क्योंकि उसकी तपा मंत्र समाधि जा सिद्धया, क्या क्या सूत्र आता है, मंत्र औषधि तपा समाधि जा सिद्ध है, क्या
वही है।
तो समाधि की सिद्धि भी मंत्र के द्वारा होती है। तो मंत्र का जाप करते करते जब अंत में सूक्ष्म सी अवस्था में मानसिक जाप होने लगता है तो वो विज्ञान का हेतु हो जाता है। तो सारा लंबा मंत्र छोड़ करके जो प्रथम शब्द होता है उस प्रथम शब्द पर आन करके रुक जाता है। जैसे गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं, अब ये ओम से शुरू होता है तो फिर ये सारा मंत्र का भाग तो खत्म हो जाएगा, ये आन करके जहां से प्रारंभ हुआ उसी पर आन के ठहर जाता है, प्रारंभ होकर के अंत में प्रचोद्यात पर जाके अंत होता है, तो अंत से भी लौट करके वही प्रारंभ पर ओम पर आ जाता है। तो वो ओम जो है वो शब्द सूक्ष्म वो चेतना को जागृत सा बना देता है। शंका उठाएंगे, अभी पिछले साल भी ऐसे क्लास लगाई थी ये प्राण के द्वारा, ये ज्योति के द्वारा, ये और वहां भी आप ऐसे कहते हैं और यहां भी ऐसे ही कहते हैं, फिर इन्हीं बातों को क्यों आप पुनः पुनः दोहराते रहते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, आप रोज ही एक ही किस्म की डबल रोटी क्यों खाते हो? ये हिंदुस्तानी रोज ये चपाती क्यों खाते हो? जब रोज तुम्हारे चपाती की जरूरत है तो इसी का नाम है अभ्यास। पुनः पुनः उन्हीं बातों को दोहरा करके दृढ़ करना जो होता है उससे मनुष्य की निश्चयात्मक बुद्धि होती है। तो इसलिए हम बार बार इन बातों को, जैसे ये आर्य समाजी है रोज 17 मंत्र हैं इनके संध्या करते हैं उन्हीं को दोहराते हैं, हवन करते हैं उनको दोहराते हैं, तो ऐसे ही सनातन धर्मी ऐसे ईसाई लोग हैं रोज वह प्रेयर करते हैं। तो रोज जब वह प्रेयर आप करते हो तो रोज इस प्रकार के अभ्यास जो है इसी का नाम अभ्यास है, पुनः पौनम अभ्यासा, तो इससे तुम्हारा विज्ञान दृढ़ होगा, तुम्हारी सूझबूझ ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हारी बुद्धि तेज हो जाएगी इसके द्वारा, इस अभ्यास के द्वारा। इसीलिए इसको अभ्यास बार बार दोहराते हैं, जैसे रोज आप बार बार डबल रोटी से बटर से तुम्हारा पेट भरता है या सब्जियों से पेट भरता है, ऐसे ये भी रोज मन की खुराक है, ये मन की तृप्ति इससे होनी है, मन ज्ञान को ज्ञान का विकास करेगा तृप्त होकर के इसके द्वारा। तो ये मन की तृप्ति के साधन बतलाते हैं, तो सूक्ष्म हो जाएगा तेज हो जाएगा, तुम्हें आत्मा को परमात्मा को जल्दी दिखा देगा।
1 जून 1978 पहलगाम, 2 जून 1978।